ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ಸಂವಿದೇ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯಾಯ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯೇಣ ವಿಪಸ್ಸಿತಾ ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ಸಂವಿದೇ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಮೇಣ ವಿಪಸ್ಸಿತಾ ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ಸಂವಿದೇ. ಪ್ರತಿಲಭ್ಯಾಯ ಕರ್ಮೇಣ ವಿಭಸ್ಥಿತಾ ನಮ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ಸುಖ ಸಂವಿದೇ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸತ್ವೇನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೆ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೇ ಜಾತೆ ಹೈ ನಿಷ್ಕರ್ಮಿಣ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯೋ ಸೆ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ನಮಃ ಮೇ ಸಾದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ದಿವ್ಯ ಜಗತ್ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ನಿರ್ವಾಣ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಸಂವಿದೇ ಸುಖ ಕೋ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ. ಅನುವಾದ ಎವಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಅನುವಾದ. ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಉನ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಜೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ರಹಕರ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ ವೇ ಅಕಲುಷಿತ ಸುಖ ಕೋ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಔರ್ ದಿವ್ಯ ಜಗತ್ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ ಅತೇ ಮೇ ಉನ್ಹೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೈಸಾ ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಸೆ ಜಾನೆ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಜಾವಾ ಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತ. ಯದಿ ಕೋಯಿ ಸಚಮುಚ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪ ಸೆ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ತೋ ಇಸೆ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಜುಟ್ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಯೇ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ವ ಯಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಕಹಲಾತಾ ಹೈ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಸತ್ಗುಣಿ ಕಾರ್ಯ ಕಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೈ. ಕಿಂತು ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಹೈ. ದೂಸರೆ ಶಬ್ದ ಮೇ ದಿವ್ಯ ಪದ ಪರ ಹೋತೆ ಹೈ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಸೆ ಹೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋ ಸಮಝಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಭಕ್ತಿ ಕೋ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೆ ನಿಷೇಧ ಸೆ ಕಾಮ ನಹೀ ಚಲೇಗಾ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಪಿ ಅಚ್ಯುತ ಭಾವ ವರ್ಜಿತಂ जब तक श्री कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्य को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। निष्कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हरेक को सदैव आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्म से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिससे श्री भगवान को समझने के पथ पर मनुष्य अग्रसर होता है। अतएव जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपस्थिता, उन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति जो में रहकर कर्म करते रहते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, भक्तिरस्य भजनं तदीहामुत्र पाधि नैरास्यस्येन नैवा मुस्मिन् मनसः कल्पनम एतत् एव च नैष्कर्म्यम्। यह नैष्कर्म्य की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म्य में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में इसी लोक में यह स्वर्ग लोक में भोगने की भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कृष्ण भावना भावित कार्य में पूरी तरह लग जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जब मनुष्य सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है तब वह नैष्कर्म के पद पर होता है। श्री भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जो आज पहली बार कक्षा में आए हैं तुम थोड़ा पूर्वा पर प्रसंग बताना उचित है। तो ये प्रसंग चल रहा है गजेंद्र की स्तुति, ये आठवां स्कंद में ये मन्वंतर में जो विशेष घटना हुआ था उसको वर्णन करते समय में श्री सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र का उदाहरण दिए, गजेंद्र मुख्य का। तो परीक्षित महाराज उसको अच्छी तरह से सुनना की इच्छा प्रकट किए, तो उनके इच्छा के अनुसार सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र मुख्य का वर्णन शुरू किए। अब पहले अध्याय में उसको वर्णन किए शुरू किए, दूसरे अध्याय में किस प्रकार वो गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर रहता था और उसका बल बुद्धि महिमा आदि के वर्णन किए और किस प्रकार उन्होंने वो जल के अंदर जल क्रीड़ा करते समय में ग्राहक द्वारा पकड़ा गया, तो इसको वर्णन किए। और दूसरे अध्याय के अंत में किस प्रकार गजेंद्र ग्राहक के द्वारा पकड़ा जाने के बाद अपने बल विक्रम के साथ उनके साथ लड़ाई किया, 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद जब हताश हो गया, निर्बल हो गया और कोई आशा भरोसा उसको रहा नहीं, तो अंततः उन्हें श्री भगवान के चरण में शरणापन्न हो करके और विकल आरती के साथ भगवान की स्तुति कर रहा है। स्तुति को इस तृतीय अध्याय में सुखदेव जी बताते हैं। अब देखिए स्तुति कौन कर रहा है, एक हाथी कर रहा है स्तुति। हाथी तो जड़ जीव है कि नहीं, उसका कोई लिखा पढ़ा थोड़ी ना है, ये सब जानते नहीं, लेकिन वो ऐसे स्तुति किया कि श्री भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ से आए उनके पास और उनको आपने श्री हस्त कमल से उद्धार किए, नक्र को काट करके उनको उद्धार किए। ये स्तुति का इतने प्रभाव है, ये गजेंद्र की स्तुति का इतने इफेक्ट है। क्यों क्यों ये स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, इतने इंपोर्टेंट क्यों, मरते समय में अब मरा तब मरा, लास्ट मोमेंट, हजार वर्ष लड़ाई करते करके बिल्कुल हताश निराश होपलेस हो करके अब मरते समय बोला कि अब तो कोई भरोसा नहीं है, निराश्रय मांग जगदीश रख्या, इस भावना करके तो उनके याद आ गया पहले जन्म में गजेंद्र जड़ बुद्धि पशु जो नहीं है उसका ये कैसे आएगा बुद्धि, भगवान को भगवत्ता को वर्णन करेगा स्तुति करेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने जो स्तुति किया ये इस जन्म हाथी क्या जानता है। पहले जन्म में राजा इंद्रदम था, पहले जन्म में भक्ति किया था, भागवत क्लास अटेंड किया था, सो श्लोक फोक याद किया था, वही उसके याद आया मरते समय में, बड़े दुखे समय में याद आ जाते। तो इसलिए ये निश्चित बात है कि विद्या मृत्यु अपि, मरते हुए आदमी का पीछा विद्या भी करता है। भगवान गीता में कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यवते ह्यवशिष्यसः, कि पूर्व पूर्व जो अभ्यास रहता है अभ्यास बाद में जो जो शरीर प्राप्त होता है इसमें भी चलता है। अगर आप रेगुलर परिक्रमा करते होंगे, मर गए तो कुत्ता बन गए तब भी परिक्रमा करेंगे, करते हैं कोई कोई, तो क्योंकि अभ्यास रह जाता है, शरीर बदल जाता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार जाता है तो मन में अहंकार में जो आप अभ्यास किए वो अभ्यास फिर आता है। इसीलिए तो हमें इस जगत में भी देखा जाता है कभी कभी छोटे छोटे बालक बालिकाएं अति कम उम्र में अस्वाभाविक कार्य में उनके बड़े पारदर्शिता दिखाई पड़ता है, कोई कला में, कोई की संगीत में, कोई समझने में बहुत निपुण हो जाते हैं कम उम्र में, इसे कितने इतने एक्सपर्टिस हो गया। तो इसका मतलब है पूर्वाभ्यास ही न ते नहीं, ये पहले जन्म के अभ्यास अभी इससे प्रकट हो रहा है, यही इसका प्रमाण है। तो सभी के क्षेत्र में ही है, तो हम पहले जन्म में जो किए हैं वही इस जन्म में आ रहे, इस जन्म तो कचड़ा से आ रहे, तो पहले जन्म में और कचड़ा था, इसलिए भक्त संघ में वृंदावन में रहकर भी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अभी अगर आप कुछ करोगे ये गारंटी जरूर है कि भक्ति अविनाशी है, इस धाम में रह करके भक्तों के संग में नित्य प्रति विदाउट फेल भागवत क्लास अटेंड करोगे, ये मंगलाती अटेंड करेंगे, विदाउट फेल जप करेंगे 16 माला और जो नियम सब आचार्यों ने दिए उनको पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से अगर इस जन्म में भगवत कृपा प्राप्त नहीं हुआ तो कोई लस नहीं है, लस नहीं है। भगवान कहते हैं कि सुचिताम सीमताम गेहे जोग भ्रष्ट भी आयत, अगर भ्रष्ट भी हो जाए तो फायदा ही है, दूसरे काम में मटेरियल इस भौतिक जगत में सुख संसार में रहकर कितने बड़े चढ़े कितने ऊपर स्वर्ग तक भी चले जाओ गिर करके फिर पता नहीं क्या बनोगे और कुछ भरोसा नहीं, लेकिन इस भक्ति में रह करके अगर फेल भी हो जाओ तो बहुत बड़ी फायदा है। भगवान गारंटी देते हैं, मैं उनको फिर चांस देता हूं, मैं उनको फिर चांस देता हूं। तो ये प्रमाण है ये गजेंद्र स्तुति, उनको अपने गुरुजी को साप मिला अगस्त ऋषि का कि हाथी बन जा बदमाश, लेकिन हाथी बन जाने के बाद भी इस जड़ जोनी पशु जोनी में भी अगर विपत्ति आया तो उसको वही याद आया, वही अभ्यास जो स्तुति से पहले जन्म में प्रैक्टिस किया था उसी स्तुति को अभी वो कर रहा है। गजेंद्र की स्तुति में आप लोग तो सब बहुत बार सुने होंगे पढ़े होंगे, भगवान का नाम नहीं आता, अंत में जाकर के जब कमल के फूल दे रहा था अखिल प्रभु नारायण इति भगवान नमस्ते नारायण का नाम लिया, वो भी लगता है किसे सुनकर, नहीं तो बिना नाम वाले सारे, यद्यपि उनकी स्तुति को बहुत आध्यात्मिक बढ़े चढ़े माना गया गजेंद्र स्तुति को, उनका बहुत वर्णन है कि कोई अगर प्रातः काल में मृत्यु समय में उसको करते हैं तो उसका फायदा है, लेकिन फिर भी उस पूरे स्तुति में भगवान के श्री नाम का वर्णन नहीं है, उनके भगवत्ता उनकी विशेषता के वर्णन अवश्य है नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्तुति महान है क्योंकि भगवान को लक्ष्य करके बोल रहा था, वो जो भी कुछ बोल रहा था उन ऊपर वाले प्रभु के लिए बोल रहा था, वो जानता नहीं था ऊपर वाले है कौन, इसीलिए इस स्थिति में कंफ्यूज हो गए देवता लोग भी उनकी बात सुनकर, अरे कहे हमको तो नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र चंद्र वरुण सब अगर खड़े थे, बोले हो सका हमको पुकारता हम आके मदद करे, मदद करे, मेरा नाम नहीं बोल रहा है, मैं टांग कर आया हूँ आईडी कार्ड मुझे नहीं बोल रहा है, मेरा पर्सनल फोन डायल नहीं कर रहा है, तो इसलिए हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन वो तो ऊपर वाला को बोल रहा था जो ऐसे हैं वो भी मानते हम भी तो ऊपर वाले है, हम तो नीचे थोड़ी ना रहते, तो सभी आकर खड़े थे, गजेंद्र जब तब किया एक एक करके सारे बड़े बड़े देवता आए, बोले हो ना हो हमको बुला रहा है लेकिन आकर मदद नहीं कर रहे थे, अंत में जब मरने पर बिल्कुल गया अब मरने वाला ही है, भगवान बोले अरे ये कैसे हो सकता है, कमल फूल देकर बोला बस मर रहा हूं प्रभु मर रहा हूं, तो भगवान ने गरुड़ जी के रफ्तार को फेल मार करके अपने बल पर विक्रम पर दौड़कर आए उनको धार करने के लिए, कई कई आचार्य बोलते हैं कि वो पूरा नाम ही नहीं ले पाया, नारायण चार अक्षर नारायण कहने से पहले भगवान आ गए आधे नाम में, बोले नाम बदनाम ना हो जाए पूरा नाम ले ले अगर मर जाए, आधे नाम में भगवान आ गए वैकुंठ से इतने स्पीड से आए, बोले नहीं मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, आधे नाम उच्चारण से हाथी को आकर उद्धार कर लिया अपने भगवान, तो भगवान की विशेषता उनके कृपा इतने महान है, ये कभी भगवान अच्युत है कभी उनका इस स्थिति से इन कृपा से, लेकिन हम इस हाथी से भी नीचे गए बीते हैं इस प्रकार से फुकार नहीं पाते, फुकारेंगे जब इसे विशेष विपत्ति आ जाए ना तब फुकार निकलेगा लेकिन अभी बढ़िया से 9 बजे प्रसाद मिल जाता है और बढ़िया सब व्यवस्था है, कंबल बंटता है और सब बनता है, तो नहीं हो रहा है सुख सुविधा रह जाते, लेकिन गजेंद्र जैसे विपत्ति में आ जाए ना कोई होपलेस हेल्पलेस हो जाए तब हे प्रभु ये करुण आर्त्री अर्थ चित्कार करके जो करुण पुकार है इसी गजेंद्र का जो हृदय से बड़े दुख का प्रार्थना है, इतने शक्ति है उसमें कि वैकुंठ से भगवान को खींचे ले आया आधे नाम, तो यह गजेंद्र स्तुति, और इस स्तुति में भगवान की वास्तविक विशेषता वर्णन किए गजेंद्र ने, और जो उन्हें सिखा था, नहीं तो भागवत में उसको नहीं दिया जाता, सुखदेव गोस्वामी उसको नहीं बोलते कुछ गड़बड़ होता, तो इसमें यद्यपि उन्होंने केवल निर्विशेष शक्ति का वर्णन किए हैं, तो इस श्लोक में आज के श्लोक में श्री गजेंद्र जी कहते हैं सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपस्थिता, केवल सत्व के द्वारा जिनको प्राप्ति किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है सत्व के द्वारा, सत्व माने प्रभुपाद लिखते हैं कि समाज में जो ब्राह्मण है उनको सत्वगुणी माना जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण है उनको भगवान के भक्त होना आवश्यक है, कोई नहीं होते हैं वो केवल ब्रह्म कर्म करके रह जाते हैं, लेकिन नहीं ब्राह्मण के कर्म से भी और ऊपर के कर्म है वैष्णव के कर्म, भगवान की भक्ति वो शुद्ध सत्व होता है, सत्वगुणी में ब्राह्मण रहते हैं लेकिन भक्ति दिव्य कर्म है शुद्ध सत्वगुण है, आप देखेंगे जो ग्वाले है ना जो गाय दूते हैं वो टॉयलेट भी जाएंगे नहाएंगे नहीं, सारे गोबर गोमूत्र में रहेंगे आकर गाय दूध दुहेंगे बिना नहाए, और ब्राह्मण उसको भोग लगाने के लिए नहाएगा धोएगा तिलक चित्ता करेगा हाथ में तब जाकर उसी, क्योंकि ये गोमाता के गोबर से तो पवित्र है उनको, उनको नहाना जरूरत नहीं, उनको पवित्र होना पड़ेगा, तो क्योंकि जो भगवान के साथ काम करते हैं। यही देखो ना, हाथी, हाथी कौन सा नाना धोना होता है? हाथी है, व्याध है, पक्षी, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जब भगवान को पुकारते हैं तो कोई पवित्रता का, शुचिता का, अच्छा कपड़ा पहनो तिलक कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो आज भी पंडित लोग कही बोलते ना, कोई पूजा वूजा होता पवित्र नहीं, कहां से घूमघाम कर, बैठ आसमान कर, थोड़ा शुद्धि हो जाना, मैं मंत्र पाठ करता हूं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जस स्मरेत पुंडरीकाख्यः सबाह्य आभ्यंतरः शुचिः। इसमें कहा गया कि तू अपवित्र में हो या पवित्र में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जस स्मरेत पुंडरीकाख्यः, पुंडरी कहते हैं कमल फूल को, कमल को लोचन श्री हरि को जो स्मरण कर ले मात्र, स्मरण मात्रेण अंदर और बाहर दोनों पवित्र हो जाओगे। ये पानी डालने से 2 किलो टॉयलेट तो अंदर रहता है कि नहीं, उसका क्या होता है? तो कोई पवित्र नहीं हो जाता संपेशेंट से लगा करके बाहर से नहाने से, कुछ नहीं होता, चाहे गर्म पानी में या ठंडा पानी में कुछ भी ना हो, अंदर तो वही कचरा, कुछ वही कचरा। तो इसीलिए सचमुच पवित्र करता है श्री भगवत नाम, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत मनन, वही पवित्र करता है। तो इसी को जस स्मरेत पुंडरीकाख्यं सबाह्य अभ्यंतर शुचि, भगवान स्मरण मात्रेण अब तुरंत अंतरिक बाहिक दोनों शुचि हो जाते हैं। तो कोई भी पशु किसी भी शरीर हो, बिल्कुल नया हाथी पता नहीं, आज ही नहा रहा है 2 साल के बाद, पानी में आज गया है, फंस गया, नहीं तो घूम रहा था। तो चाहे किसी भी जोनी में हो, चाहे पढ़े लिखे हो न, कुछ भी हो, अपवित्र हो पवित्र हो, अगर भगवान को सीधा लक्ष्य करके पुकारेंगे, उनको चिंतन मनन करेंगे, तो बिल्कुल शुद्ध स्तर पर आ जाएगा। सत्वान सत्वेनम प्रतिलभ्याय, तो गजेंद्र कहते हैं प्रभु आप तो दूसरे से होते नहीं है, सत्व असली सत्व कहते हैं जो आपकी भक्ति, आपके भक्ति से जाना जाता है। इसको प्रभुपाद जी ने तुरंत तात्पर्य शुरुआत में लिखे, केवल भक्ति से जो जाने जा सकते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वते गत्वा विशति तदनन्तरम्। भगवान को जानेंगे, उनके पास जाएंगे केवल भक्ति के द्वारा। अब भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी बात भी लिखते हैं, भक्ति क्या है, श्रवणं कीर्तनं विष्णुं पाद सेवनं, जिनसे भगवान को समझने के पथ पर, ये जो श्रवण कीर्तनाख्या भक्ति, जिस भक्ति के कार्य में श्रवण करना कीर्तन करना ही मुख्य क्या रही है, मुख्य कार्य है, यही श्रवणाख्य भक्ति जो है, इसी के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, तत्व से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ही सत्व है, वास्तविक शुद्ध सत्व ही है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम, उसी के द्वारा भगवान प्रतिलभ्याय। निष्कर्मेण विपश्चिता, बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी अब निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म पहली स्टेप है भक्ति का, सकाम कर्म तो भोगी है, भोग जो नहीं सब, जैसे हम इस लोक में नहीं तो अगले जन्म में कोई सुख भोग करे, इसी के अच्छा लेकर जो अच्छे कार्य पुण्य कार्य करते सकामी होते हैं। नहीं, सकामी से ऊपर उठ करके और अच्छे होते हैं जो निष्कामी है, वो कोई कामना रखते नहीं, हमको भोग नहीं चाहिए। निष्काम निष्कर्म का परिभाषा प्रभुपाद जी ने उपनिषद से निकाल कर दिए हैं। निष्कर्म शब्द का असली अर्थ है जिन महापुरुषों ने इस लोक में, इसी जीवन में या आमूत्र भविष्य जीवन में, भविष्य में कोई और सुलभ किसी भी प्रकार ना यह लोक ना परलोक में कोई भोग सुख का आशा ना करे। इसका मतलब नहीं कि काम बंद कर दे, नहीं, काम करते रहे। काम को बंद करना निष्कर्म नहीं है, काम करते हुए कर्म में और कर्म फल में अनासक्त होना ये निष्कर्म है, उसको नहीं चाहन रखना। वास्तविक काम को बंद करने से कोई संतुष्ट नहीं हो जाना, या फसना फसेंगे हम करेंगे नहीं तो फिर, अरे नहीं, काम बंद करके कोई रह नहीं सकता। चाहे कायिक मन बंद कर दो तो मानसिक चलेगा, है ना? नहीं, कई लोग बोलते हैं बड़े बड़े महत्व ना, हम रुपया पैसा छूते नहीं है, आप ऐसा करो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। अब इसमें थोड़ी ना चलता तो काम बंद करने से निष्कर्म नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़े बड़े वैरागी लोग, त्यागी लोग अपने काम दाम बंद कर बोले नहीं, हम कर्म संन्यास ले लिए, लेकिन कर्म संन्यास से बचे नहीं, उन्हें जाकर के फिर भी उनका मन नहीं भाया, फिर आकर के संसार में बड़े बड़े सब पब्लिक वेलफेयर कार्य में करते हैं, बड़े बड़े संन्यासी। बोले क्यों? क्योंकि इससे नहीं बनता, भगवान की भक्ति से ही केवल सुधार होता है। तो भक्ति है वास्तविक नैष्कर्म, इसी को भागवत में नारद जी कहते हैं, नैष्कर्म में अपी अच्युत भाव वर्जितम। अरे नैष्कर्म करते हुए भी जब अच्युत भगवान की भावना से भक्ति नहीं किया तो दैट इज ऑल्सो यूजलेस, दैट इज ऑल्सो यूजलेस, कुछ मतलब। तो आप निष्काम कर्म करो वो कोई इतना अच्छा नहीं है। कई लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, निरामिषाहारी, तो बड़े गर्व करते हैं, हाँ मैं जन्म से शाकाहारी, तो क्या हो गया है? गरुड़ जी वो शाकाहारी है क्या? भगवान के डायरेक्ट वाहन है, इतने बड़े हैं। सोवरी मुनि ने डांटा है तो मछली खा गया मेरे घर में आकर के, लेकिन सोवरी मुनि का हाल खराब हुआ, गरुड़ जी रहे, उनका कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए कोई खान पान से गर्व मत करो, मैं इसे मैं केवल साग खाता हूं, मैं केवल दूध पीता हूं। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे चेतन भागवत में, एक नवदीप में 500 साल पहले जब महाप्रभु थे, महाप्रभु जब अपने द्वारा कीर्तन लीला शुरू किए, एक नवदीप डिस्ट्रिक्ट में फेमस, पूरे जिला में फेमस था, एक ब्राह्मण था, पूर्ण वैरागी था और शास्त्र ज्ञानी था और आजीवन ब्रह्मचारी था, और 3 बार गंगा में स्नान करता था और भागवत आदि पढ़ता था, जीवन भर अन्न नहीं खाया, राइस रोटी सब्जी दाल खाया ही नहीं, फल भी नहीं खाता था, सब्जी वब्जी नहीं खाता था, केवल दुग्धहारी था। दुग्धहारी बाबा पूरा सन्यासी, इतने बड़े पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग उनको पूछते थे, रे बाबा बड़े प्रसिद्ध तपी जपी तपस्वी, यानी ऐसे माना जाता था। उन्होंने आकर के शिवास ठाकुर को बोला, शिवास जी आप तो मुझे जानते हैं ना, अरे आपको कौन नहीं जानता, पूरे दुनिया प्रसिद्ध है आप, इतने महान पवित्र तपस्वी है ना, मैं थोड़ा तप करना चाहता, दर्शन करना ना, आप तो योग्य व्यक्ति है लेकिन महाप्रभु पता नहीं क्या कहेंगे, चलिए मैं ले जाता हूँ। वो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा था, एक दिन उसको ले गए, बोले देखो सामने नहीं आना, पीछे बैठना चुपचाप, जिस किसी को बताना चले तो पीछे बैठ कर, और पीछे बैठ कर देख रहा था भगवान नृत्य शुरू किए, बोले नृत्य नहीं हो रहा है, कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया, अनधिकारी, ये तो इतने तो बड़े अधिकारी है अनधिकारी। जब शिवास ने बोले अनधिकारी तो कोई नहीं है लेकिन जरूर नवदीप के जो फेमस ब्रह्मचारी दुग्धहारी बाबा जी ने, अरे दूध पी करके मेरे नृत्य देखने के लिए अधिकार प्राप्त कर गया, गेट आउट, उसको चोटी पकड़ करके गले में धक्का मार करके निकाल दी उसको, इतने अपमानित हो गया, रोया बैठ करके, बोला हाय हाय क्या मैं करूं, जीवन भर ने इतने तप किया, गंगा नहाया, तप किया, दूध भर पिया और कुछ खाया ही नहीं अभी तक मैंने जीवन इतना किया, लेकिन इसके लिए भी आई एम अनफिट, आई एम अनक्वालिफाइड, रोया बैठ करके। तो भगवान दया के बुलाए, बोले देखो ये सब तपस्या से, दूध पीने से, नहीं खाने से, खाने से, ये सब करने से कुछ नहीं होता, फिर कैसे होता, नम्र भक्ति से होता, भक्ति कहां से, मेरे भक्तों की संग करो, उनकी कृपा से, श्रवणाख्या श्रवण कीर्तनाख्या भक्ति, इसी से मैं प्रसन्न होता हूं, बाकी किससे नहीं। इसीलिए कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्ति के तरफ, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसी को वो गजेंद्र भी बोलते हैं, जो सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, वास्तविक निष्काम है, चाहे इसी लोक में, इसी जीवन में या परलोक में, भविष्य जीवन में, किसी प्रकार देह सुखी मेरा आशा नहीं, केवल आशा क्या न है प्रभु, आपके चरण की सेवा की आशा है, बस यही मात्र आशा मरो, बस यही आशा लेकर जो जीते हैं वही वास्तविक नैष्कर्म है। नम कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, कैवल्यनाथ जो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, अकलुषित सुख के दाता, जिसे कोई कलबस नहीं है, दिव्य जगत के पति कैवल्यनाथ, जो दिव्य धाम है भगवत धाम, उसको कैवल्य कहा जाता है, वैकुंठ का नाम है कैवल्य। तो कैवल्य जिसमें कोई कलमस फलमस नहीं है, बिल्कुल निष्कलुष धाम है वह कैवल्य, उसके जो हेड है, उसके जो पति है, नाथ है, उसको बोले कैवल्य नाथ, भगवान नारायण वैकुंठ पति, वही नारायण है। निर्वाण सुख संविदे, जिसमें कोई भौतिक लेस गंध मात्र नहीं है, वह निर्वाण, बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल, वो निर्वाण, निर्वाण सुख को देने वाले, बिल्कुल ऐसे विशुद्ध सुख को प्रदान करने वाले, ऐसे दिव्य जगत के नाथ, आपको नमः, आपको प्रणाम करता हूं। बस हमारे पास है क्या और करने के लायक, कुछ नहीं कर सकते, भगवान को ये दे देंगे, तेरे पास है क्या बदमाश, दे दोगा तूने, आए थे नंगे जाओगे नंगे। कबीर जी कहते हैं हाथ पसारे आए तूने, मुट्ठी बांध के आते हैं ना, मुट्ठी बांध के आए तूने हाथ पसारे जाओगे, आते समय मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुट्ठी बांध कर आया, जाते समय कुछ नहीं ले पाया। तो कुछ नहीं है, सब उनका ही दिया हुआ है, उनके दिया हुआ है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम छोड़ेंगे क्या, देंगे क्या। तो केवल हमारा पास इतना ही सामर्थ्य है कि प्रभु प्रणाम कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। ये भगवान हमको अपना स्वाधीनता दिए हैं, आप चाह करके भगवान को प्रणाम करो, नहीं तो दूसरे से प्रणाम लो, अहंकार को पोषण करो, नहीं, भगवान को स्तुति करना इतने पावरफुल है। गजेंद्र एक हाथी भी प्रणाम करके भगवान को बैकुंठ से खींच लाया, प्रणाम के मात्र से, प्रणाम ही दुख समनम भागवत कहता है, कोई ढंग से प्रणाम कर दे तो दुख के समन हो जाए, प्रणाम ही दुख समनम। तो प्रणाम करना ये कोई साधारण बात नहीं, लेकिन प्रणम्य केवल भगवान है, दूसरे के प्रणाम नहीं। सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रति गच्छति, और कोई प्रणाम को ग्रहण करने का ताकत किसी का नहीं है, कोई रख नहीं सकते प्रणाम को, केवल प्रणम्य है तो भगवान विष्णु। तो इसलिए उनके लक्ष्य में डायरेक्ट प्रणाम किया जाए, जैसे हाथी ने कर रहा है। हाथी ने करके जब वो अपने काम निकाल लिया तो हम लोग तो हाथी से बेटर है कि नहीं, है ना, नहीं, हाथी से बहुत उच्च स्थिति में है, वृंदावन धाम में है, मक्त संग्रेश है, तो हम लोग को हाथी से बढ़कर करना चाहिए प्रणाम। वो केवल नमस्कार प्रणाम करके जो उनको याद आया पहले जन्म से उसको याद करके भगवान को प्रणाम किया, और भगवान वैकुंठ से आकर के डायरेक्ट अपने श्रीहस्त कमल से उनको उठाकर उद्धार किए, वैकुंठ भजवा दिए। तो ये बहुत बड़े आश्वासन वाक्य है कि अगर हम वास्तविक हृदय के अंतस्थल से करुण आरती करके भगवान को पुकारे, हे प्रभु आई एम हेल्पलेस, बस तू ही भरोसा प्रभु, अब बचाओ, अब मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कैसे प्रार्थना करना चाहिए, निष्कर्मणे ही विद्वान व्यक्ति है जो इस दुनिया के या परलोक के कोई भोग सुख को आसाना करे, इसका मतलब नहीं वो कुछ नहीं मिलेगा, भगवान देंगे, भगवान अपने आप देंगे, आपके कर्म के अनुसार जो आपको सुख मिलने वाला है ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, प्रीपेड है, आप फिर क्यों मांगते हो, ऑलरेडी पहले डिसाइडेड। तो इसलिए आप चिंता मत करो आपका क्या होगा, आपका जो होगा सो हरि, जो होगा ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमको केवल करना क्या है, फिर करना केवल नमः, केवल प्रणाम करना है, और कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी खाना और बाकी जो भी शरीर के लिए आवश्यकता है मेंटेनेंस के लिए, ये तो प्रकृति क्रियमाणानी, भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति सब करा रही है, कर रही है। तो हमको अपने ओर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और उनकी स्तुति करना चाहिए, और वो स्तुति कपट युक्त न हो करके निष्कपट होना चाहिए, जैसे हाथी ने किया। हाथी के अंदर कोई और आशा नहीं था, नहीं बिल्कुल, इसीलिए भगवान आ गए खींचे। जब कुछ और आशा रहता है तब तो भगवान नहीं आते। ओ साड़ी खींच रहे थे किसका, द्रौपदी, अब कितने उनको हाल खराब, एक बार लैंड मोमेंट भगवान आए, लेकिन जबकि वर्णन आता है भगवान सबसे पहले आ गए थे, लेकिन वो सबसे पहले बुला करके भगवान आ गए दौड़ कर, अरे कृष्णा को विपत्ति है, लेकिन वो जा कर उनको पुकारा उनका पास, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। भगवान पार्टनरशिप पसंद नहीं करते, और सोल प्रोप्राइटरशिप है, और किसी के पास जाओ भगवान बोले ना, तो फिर जाओ देख लो, जाओ शायद कर ले, देख लेना, देख लो, देख लो, कोई नहीं हेल्प कर सकता। ये भगवत वाक्य है, मम माया दुरत्तया, भगवान बोलते किसी का कोई माई के लाल का ताकत है, मेरे शक्ति है माया, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, केवल मैं ही हूं, मामे वये प्रपद्यन्ति माया मे ताम तरन्ति ते। तो केवल भगवत शरण, भगवत नमन, भगवान की स्तुति प्रार्थना, उनके शरणागत हो जाना, उनके शरणागत होकर के उनको वंदना करना, प्रणाम करना, बस यही तो हमको करना है। बाकी खुराक पोशाक और इस शरीर की मेंटेनेंस आवश्यकता सब प्रभु की कृपा से अपने प्रकृति सब कर रही है वो करेगा। हमारे ओर से केवल इतना ही करना होगा जैसे गजेंद्र ने किया, नहीं तो मर जाता। मरने मरेंगे तो हम, मरना हम समझते हैं मरना क्या है, शरीर परिवर्तन को मरना समझते हैं, लेकिन आत्मा कोई मरता नहीं है। न जायते मृयते वा कदाचिन, आत्मा तो हमेशा फिर कोई शरीर में जाएगा, फिर कोई शरीर में जाएगा। वास्तविक कल्याण तो तभी होगा तब ये शरीर फिर ना जाए, ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही जो हमारे असली प्रॉब्लम है वो फिर आए ना, कैसे नहीं आएगा। जन्म होंगे तो शुरू होगा ही, फिर जन्म होगा तो बुढ़ापा व्याधि ये सब फिर बोलते नहीं चक्कर ही खत्म, जब ये दुनिया में आएंगे नहीं। सीधा कैवल्य पते उस विशुद्ध दिव्य धाम को अगर चले जाएंगे, ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है ना कोई दुख है ना कुछ नहीं, विशुद्ध सेवा भाव सुख में रहेंगे बिल्कुल। ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्हीं को इस प्रकार समर्पित होकर प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये इस भागवत में गजेंद्र आदि अनेक अनेक स्तुति सब दे करके दिखाते हैं कि देखो ये भी किसी प्रैक्टिस किया था भगवान को जानते हैं। केवल स्तुति मात्र नमः, केवल नमस्कार करके यही बात कहकर नमस्कार किया। बेचारा फंसा हुआ था सरोवर के अंदर, ग्रह पकड़ लिया था, कितने टन ब्लड खींच लिया था उनसे, बिल्कुल ब्लड भी कोई देने वाले नहीं था। अगर यहाँ पे होता तो पहले ब्लड ग्रुप चेक करो, हम ब्लड देंगे आपको, ब्लड ही नहीं तो बचेगा कैसे। अरे भाड़ में जाइए शरीर को बचा कर, गजेंद्र को बोले मतलब ये शरीर मुझे जरूरत नहीं, जाने दो हमसे को ब्लड ले लूंगा, नहीं बचाना नहीं। अब भगवान ये शरीर क्या देंगे, दिव्य शरीर में अपने धाम ले गए। तो है भगवान की, भगवान को पुकारोगे जो वास्तविक ही कल्याण होगा, जो वास्तविक आत्यंतिक कल्याण, जिसके परे वो कल्याण को कुछ हो ही नहीं सकता, सोचा नहीं जा सकता। एक कल्याण हुआ उसके बाद में फिर डिमांड, तो ये कल्याण नहीं है, आत्यंतिक कल्याण नहीं है। आज किसी ने कंबल दे दिया पुराना फट गया, फिर अगले महीना अगले साल दिसंबर को फिर ढूंढोगे, फिर अगले बार। तो ये सब से एक बार ऐसे कोई करुणा करे जो सदा के लिए ना भूख ना प्यास ना दुख ना आवश्यकता कुछ ना रहे, वंस फॉर ऑल ओ है श्री प्रभु के चरण में शरणागत होकर के एक बार प्रणाम कर लो, प्रणाम दुख समनम वंस फॉर ऑल खत्म। फिर कभी दुख आएगा ही नहीं, कोई टेंशन हो ही नहीं सकता, भले किसी भी शरीर में रहो। एक महात्मा थे, उनको किसी कारण से कौवा के शरीर मिला, काक भुसुंडी। भगवान के भक्ति के काक के शरीर में भी इतने बड़े महान हो गए कि बड़े बड़े जाकर लेकिन प्रणाम करते हैं, प्रणाम काक भुसुंडी महाशय प्रणाम करते हैं। तो इसलिए कोई शरीर से अष्टवक्र महामुनि थे, अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उनको प्रणाम करते थे। तो इसलिए शरीर कोई जाति कोई स्थिति कोई गरीबी ये सबसे कुछ मतलब नहीं रखता, मतलब केवल यही रखता है भगवत शरण के प्रति कितने शरणागत हो तूने, दैट्स इट। वही पवित्रता के परिचायक, वही सम्मान के परिचायक, वही हमारे दक्षता के परिचायक। कितने मात्रा में भगवान के चरण में हम शरणापत्ति ग्रहण कर पाए, शरणागत हो पाए, कैसे उनको हम प्रार्थना कर पाए, दैट्स इट। इस जीवन का यही मात्र एकमात्र प्रयोजन, यही एकमात्र लक्ष्य, यही गजेंद्र स्थिति से हमारे सीख ले तो हमारे भी जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। ओके, एनी कमेंट और क्वेश्चन? यस, उस स्थिति से भी और पावरफुल हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, तो कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, मुंह से कर लो, है ना, चलेगा। काय से मन से वाक्य से किससे भी कर सकते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की जय।